मैंने मम्मी के पास जाने के लिए आप पर दबाव बनाया जबकि आप जाना नहीं चाहते थे। तभी से आप मुझसे कटे कटे से रहने लगे हैं, ठीक से मुझसे बात नहीं करते। मैं बात शुरू करती हूँ तब भी अनमने ढंग से छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाते हैं। पहले जैसे मुझे छेड़ते भी नहीं, मेरे करीब भी नहीं आते, और मैं कोशिश करती हूँ तब भी बिल्कुल बेअसर से रहते हैं। आपका ये रूखा व्यवहार मुझे एहसास दिलाता है कि आप मेरे पास होकर भी मुझसे बहुत दूर चले गए हैं, और ये बात मुझे बेचैन कर देती है। अगर आप नाराज हैं तो मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। अगर मेरे उस फैसले ने आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई हो या आपका दिल दुखाया हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिए मुझे और वापस मेरे पहले वाले मिश्रा जी बन जाइए। कशिश सारे वक्त खामोशी से ईशान को देखते हुए उसकी बातें सुनती रही। मायूसी और उदासी से अपनी बात उसके सामने रखने के बाद कशिश चुप हो गई। काशी, इधर देखो मेरे तरफ। ईशान की गंभीर आवाज उसके कानों से टकराई तो कशिश ने हौले से सिर उठाकर उसे देखा। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। तुमने उस दिन जो किया बिल्कुल ठीक किया। एक अच्छी जीवन संगिनी की तरह उस दिन तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया था, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं तुम्हारा। अगर तब तुम मुझे नहीं समझाती तो मैं बेटे का फर्ज निभाने में चूक जाता। उन्होंने मुझे जन्म दिया था, उनका हक था मुझ पर, और मैंने जो किया वो एक बेटे होने का नाते मेरा फर्ज था। तुमने मुझे मेरी जिम्मेदारियों और फर्ज से मुंह मोड़ने से बचाया है, वरना ये बोझ मैं सारी जिंदगी नहीं उतार पाता। इसीलिए अपने मन से ये बात निकाल दो कि मैं नाराज हूं तुमसे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। ईशान ने संजीदगी से अपनी बात उसके सामने रखी और उसके दिल से इस बात को निकालने की कोशिश की। वही उसकी बात सुनकर कशिश आंखों की पुतलियां फैलाए बेचैनी से उसे देखने लगी और हैरानी से बोली, अगर आप नाराज नहीं तो मेरे प्रति अपना व्यवहार इतना क्यों बदल गया? आप इतना नीरस और रूखा व्यवहार क्यों करने लगे मेरे साथ? वो नाराजगी तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए थी। ईशान के शब्द सुनकर कशिश चौंक गई और अचंभित सी उसे देखने लगी। ईशान ने खोई स्वर में आगे कहा, हाँ, ये रूखा व्यवहार नाराजगी तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए है। तुम पराई होकर उनका दर्द समझ गई, पर मैं उनकी सगी औलाद होकर भी अपनी नाराजगी और नफरत के आगे कुछ देख नहीं सका। अगर उस दिन तुमने दबाव नहीं बनाया होता तो शायद मैं वहां जाता भी नहीं, और अगर उस दिन मैं थोड़ा पहले पहुंचा होता तो शायद सदा के लिए अपनी आंखें मूंदने से पहले वो आखिरी बार मुझे और दीदी को देख पाती, पर उनकी वो इच्छा अधूरी ही रह गई। ईशान का मन आत्मग्लानी से भर गया और चेहरे पर दुख व पछतावे के भाव उभर आए। कशिश ने उसे तकलीफ में देखा तो थोड़ा ऊंचा उठते हुए उसने प्यार से उसके गाल को छुआ। मिश्रा जी, जो होना था वो हो गया, पछतावे से अब कुछ नहीं होगा। शायद उनके नसीब में ऐसे जाना ही लिखा था, इसीलिए अपने मन में कोई गिल्ट मत रखिए। आपने एक जिम्मेदार बेटे होने का हर फर्ज निभाया है। माँ पापा को आपसे कोई शिकायत नहीं होगी, बल्कि उनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी, क्योंकि उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें अंतिम विदाई इस घर से मिली और उनका अंतिम संस्कार आपने पूरे विधि विधान के साथ किया। ईशान ने पलट कर कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से उसे तकता रहा। कुछ देर बाद कशिश ने ही गंभीरता से आगे कहा, मिश्रा जी, माफ कर दीजिए सबको। उसकी ये बात सुनकर ईशान चौंक गया। काशी? कशिश ने ईशान को बोलने का मौका न देते हुए आगे कहना शुरू किया, बात सुनिए मेरी, उनके लिए नहीं, अपने दिल के सुकून के लिए अपने दिल से सारी नाराजगी और कड़वाहट निकालकर फेंक दीजिए। इस नाराजगी और नफरत से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। हमारी नफरत या नाराजगी से जितनी तकलीफ हम सामने वाले को पहुंचाते हैं उससे ज्यादा तकलीफ हमें होती है। फिर एक ना एक दिन हम सबको महादेव की शरण में जाना है और सही गलत का फैसला करके न्याय करने का काम भी उनका है। वे सबको उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। फिर बेवजह किसी के लिए अपने मन में नाराजगी या नफरत रखकर अपने मन को क्यों मैला करना, अपने कर्म क्यों खराब करना? सच्चे दिल से माफी मांगने पर बड़े से बड़े गुनाह की माफी मिल जाती है, और इस दुनिया से जाने के बाद हम अपने साथ बस अच्छी यादें लेकर जाएं, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलती है। देख लीजिए माँ को, जाने से पहले उन्होंने माफी मांगकर अपने मन का बोझ हल्का कर लिया और सबने माँ को माफ कर दिया, आपने भी तो कर दिया। तो जब उन्हें माफी मिल गई तो बाकियों को भी दीजिए अपनी माफी। जैसे भी हैं वे, हैं तो आपका परिवार, उनके बिना आप बिल्कुल अकेले हैं, और पापा भी तो यही चाहते थे। खत्म कीजिए अब इस नाराजगी और गुस्से को, जो हुआ उसे भुला दीजिए, खुद को और अपने अपनों को और तकलीफ मत पहुंचाइए। कल को अगर ये परिवार भी आपसे छिन गया तो बहुत पछतावा होगा आपको, इसीलिए मेरी बात मानिए, माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो बड़प्पन दिखाकर सबको माफ कर दीजिए, साथ मिलकर एक खुशहाल परिवार जैसे आगे की जिंदगी सुकून से जीने की कोशिश कीजिए। कशिश चेहरे पर गंभीर भाव लिए बड़े ही प्यार से उसे समझा रही थी। ईशान भी उसकी बातों को सुन और समझ रहा था। काशी, मुझे किसी से कोई नाराजगी या शिकायत नहीं। मैंने सबको तभी माफ कर दिया था जब दीदी की शादी में मेरी नाराजगी के बावजूद सबने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उस वक्त मुझे सालों बाद एहसास हुआ कि मेरा परिवार है जो मेरे साथ है। माँ के बारे में जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वक्त और हालात के आगे कभी कभी हम इंसान इतने बेबस, लाचार और मजबूर हो जाते हैं कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। जाने अनजाने में हुई एक गलती हमारी पूरी जिंदगी तबाह कर देती है और हम पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। एक गलती माँ से हुई जिसकी सजा उन्हें मिली और दूसरी गलती इस परिवार से हुई। मैंने माँ को भी माफ कर दिया और बाकी सबसे भी मुझे कोई शिकायत नहीं। पर इन सालों की दूरियों, नाराजगी ने मेरे और इस परिवार के बीच कभी न भरने वाली गहरी खाई बना दी है जिसे चाहकर भी पार करके मैं उनके तरफ नहीं बढ़ सकता। मैं चाहूं भी तो अब उनके साथ सहज नहीं हो पाता। इंसान चाहे तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल या नामुमकिन नहीं मिश्रा जी। अगर सच्चे दिल से कोशिश की जाए तो सब संभव है। आपने खुद को सबसे अलग करके इस कमरे की चार दीवारी के बीच कैद किया हुआ है। अपने बनाए इस कोप भवन से बाहर निकलिए, सबके साथ बैठा कीजिए, उनकी बातों में शामिल होने की कोशिश किया कीजिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ और अपनों के प्यार, अपनेपन के सहारे रिश्ते में बनी हर खाई को पार किया जा सकता है। और मैं हूं ना आपके साथ। आप बस कोशिश कीजिए, मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूंगी। और देखिएगा, धीरे धीरे आप भी सबके साथ ऐसे ही घुल मिल जाएंगे जैसे मैं घुल गई हूँ इस परिवार में। करेंगे ना कोशिश मेरे लिए? कशिश उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखने लगी। ईशान ने हौले से सहमति में सिर हिला दिया। कशिश खुशी से उछलते हुए उसके गले से लग गई। ईशान उसे देखकर हौले से मुस्कुरा दिया। काशी, उस दिन घाट पर बैठकर रो क्यों रही थी तुम?